परिहं तारणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयिर्याणं प्रणमो वज्झायाणं प्रणमो लोये सौवसागुणं येषु पञ्च नमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषीं पढमं भवै मङ्गलम् पढमं भवै मङ्गलम्। पंच परमेश्वर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की त्रिलोक नक्शा को शायद नहीं समझाया है, उसको समझेंगे। पेज नंबर 24 पर यह त्रिलोक नक्शा है। जो कि केवल ज्ञान में आया हुआ केवली भगवंतों ने तीन लोक को इस प्रकार से देखा है। केवल ज्ञान के बिना इसका ज्ञान नहीं हो सकता। संपूर्ण तीन लोक को एक साथ जानने की शक्ति केवलियों को ही होता है। और केवली को होता है ये कहने से तीर्थंकरों को ही केवल होता है ऐसा कुछ नहीं। सामान्य मनुष्य भी यदि केवल ज्ञान कोई भी प्राप्त कर लेता है तो उनके ज्ञान में भी यही सब कुछ आता है। तीन लोक के संबंध में यदि वो भी उपदेश दे दें तो ऐसा ही देना पड़ेगा। तीर्थंकर भी देंगे तो ऐसा ही देना पड़ेगा। सामान्य मनुष्य को केवल ज्ञान होने पर उनको देना पड़े तो ऐसा ही देना पड़ेगा। जगत जैसा होता है वैसा ही कहना पड़ता है, उसमें हेरा फेरी नहीं चलती। जैसा आता है ज्ञान में वैसा ही कहना पड़ता है। ज्ञान एक दर्पण है, दर्पण के भीतर जैसी वस्तु सामने वाली झलकती है वैसा ही वो दिखा देता है, उल्टा नहीं दिखाई देता। वस्तु काला है तो काला ही दिखाई देगा, सफेद है तो सफेद ही दिखाई देगा, लाल है तो लाल ही दिखाई देगा। ऐसा ही ज्ञान का काम है। ज्ञान दिखाने वाला है, देखने वाला भी है और दिखाने वाला भी है। स्वयं में अपने को और पूरे जगत को ज्ञान देखता है और जिसको देखता है उसका वह उपदेश भी कर सकता है। इसलिए आत्मा में रहने वाले ज्ञान को स्व और पर प्रकाशक कहा है। आत्मा का ज्ञान गुण स्व प्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है। स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाश देता है। वस्तु स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कहने वाला ज्ञान ही है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सम्यक ज्ञान परमावश्यक है। सम्यक क्रिया से पहले सम्यक ज्ञान आवश्यक है और सम्यक ज्ञान आए बिना सम्यक क्रियाएं तो जीवन में आ नहीं सकती। ज्ञान के पश्चात ही क्रियाएं आना संभव है, क्योंकि ज्ञान जब तक सम्यक ज्ञान नहीं बनेगा तो उससे पहले तो मिथ्या ज्ञान ही रहेगा। मिथ्या ज्ञान रहेगा तो मिथ्या ज्ञान जैसा सोचेगा, जैसा विचार करेगा, जैसा देखेगा, वैसा ही कहेगा, वैसा ही चलेगा, आचरण भी उसका मिथ्या ही बनता है। इसलिए जिनवाणी का जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान ही मनुष्य जीवन में परम आवश्यक है। इधर उधर का ज्ञान तो बहुत इकट्ठा होता है अपने पास जन्म के साथ ही। जन्म के साथ ही क्या, गर्भ में थे तब भी इधर उधर का ज्ञान तो हम इकट्ठा कर ही लेते थे। किंतु जो ज्ञान अनादिकाल से है उसको कुछ इकट्ठा करना नहीं पड़ता, वो तो है ही, मिथ्या है। पर जो चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कमाना पड़ता है और कहां से कमाएंगे, जिनवाणी शास्त्र को ही पढ़ करके उसे कमाना पड़ेगा। बाजारों शास्त्रों से आपको सम्यक ज्ञान नहीं मिलने वाला। बाजार में क्या मिलेगा, बाजरी मिलेगा। ये है एक सम्यक ज्ञान। दो महीने से जो सुन रहे हैं, कमा रहे हैं, ये असली ज्ञान है। ये केवल ज्ञानियों का ज्ञान है, ये जिनवाणी, इसी की दुर्लभता है। सबसे बड़ा दुर्लभ है ये ज्ञान। बारह भावना में कहा है, चौदह राजु उतंग नव लोक पुरुष संतान, यामी जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। चौदह राजु उतंग ये लोक है, नीचे से लेकर ऊपर तक चौदह राजु बनता है। नीचे उसका फाउंडेशन सात राजु आधा है और मध्य लोक तक सात राजु हो जाता है। मध्य लोक से वहां जहां सिद्ध परमेष्टियों को दर्शाया गया है वहां तक सात राजु होता है। अधोलोक से मध्य लोक सात राजु ऊंचाई पर है, बीच में जहां सुमेरु पर्वत दिखाया है वो मध्य लोक है। उसके ऊपर सिद्ध शिला, एकदम सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध परमेष्टि छोटे छोटे तीन चार पांच दिखाए गए, वहां लोक समाप्त होता है। तो मध्य लोक से सिद्ध परमेष्टि तक सात राज्य है, नीचे का सात और ऊपर का सात। चौदह राजू ऊंचा वाला यह लोक किस आकार का है? मनुष्य यानी मनुष्य आकार का तो बन ही गया, मनुष्य अपने कमर पर हाथ दोनों रख करके ऐसा पांव फैलाकर यदि खड़ा होगा तो तीन लोक का आकार बनता है। परंतु मनुष्य आकार कहने से मनुष्य जैसा है वैसा ही ऐसा नहीं समझना, आकार मात्र ग्रहण किया है, ये मनुष्य आकार से दिखता है, पर इसका ओरिजिनल आकार घनाकार है। घनाकार समझते, माचिस बॉक्स काड़ी पेटी कैसा है कहने से चौक है या आयत है इतना कहते, तो चौक और आयत तो केवल एक रेखा मात्र ऐसा ऐसा और ऐसा ये हो गया। घनाकार कहने से उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ जाती है, इसको घनाकार बोलेंगे। तो तीन लोक भी इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ है, एक तो यह तो एक तरफ का पोज दिया है, जैसे आदमी का सामने वाला पोज फोटो से खींच लिया वैसा है ये, उसके अंदर का नहीं उसके पीछे का भी नहीं। तो तीन लोक का ये सामने वाला पोज है, किस प्रकार का है ये, तो घनाकार समझना चाहिए ऐसे तीन लोक के फ्रेम को। दो रखो, एक ऐसा रखो एक ऐसा रखो और सभी कोनों को मिला दो, जहां जिस राज्य का है उतना उतना मिलाना, तो एक घनाकार तैयार हो गया, तीन लोक एक डब्बे के आकार का ऐसा डब्बा बन गया। ऐसा वो गुप्तदान पैसा डालने वाला डब्बा होता है ना, देखा है कहीं, तीन लोक का ही आकार बनाते हैं, ऊपर से पैसा डाला जाता है साइड से भी नहीं, और सिद्धालय से पैसे गिरते हैं मध्य लोक में। सिद्ध परमिष्ट पैसा बरस रहे ये घनाकार बनेगा। और ये तीन लोक कहाँ हैं इसकी परिकल्पना उस डब्बे के अंदर कल्पना करें, जहां आप पैसा डालते हैं वहां इतना बड़ा डब्बा है यदि है, तो उसमें उस डब्बे का जो आकार है वह नीचे सात राज्यों है, मध्यलोक तक सात राज्य हुआ, ऊर्ध्वलोक तक सात राज्य हुआ। तो चक चौकाकार एक पाइप ले लो, वो कितना, तो चौदह राज्यों यदि है तो चौदह राज्यों को चौदह इंच समझ लो, चौदह इंच, उसमें से एक इंच वाला पाइप चक चौक पाइप उसके बीचों बीच छोड़ो जहां पैसा डालते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा वो पाइप। तो ये पाइप क्या है, इसको त्रिसनाली कहा है, त्रिसनाड़ी बोलते हैं इसको, त्रिसनाली कहो नाड़ी कहो। त्रिसनाली का तात्पर्य यह है कि त्रिस जीव, आपको मालूम है त्रिस जीव क्या होते हैं, द्विइंद्री तीन इंद्री चतुरेन्द्री पंचेन्द्री, जिनको त्रिस जीव कहते हैं, त्रिस जीवों के कारण से इस पाइप का नाम त्रिसनाली ऐसा पड़ा। ऐसा क्यों, क्योंकि त्रिस जीव इस पाइप के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं होते, डब्बा तो बहुत बड़ा है सब जगह खाली है, अंदर पाइप के भीतर त्रिस जीव हैं, और उस पाइप के भीतर ही शंटर में मध्यलोक है, चकचौक एक राजू चकचौक है, वहां असंख्यात द्वीप और समुद्र है, कितने में? एक ही राजू में। और उसके अलावा बाहर और है क्या? नहीं, लोग है वो ऐसा जो है सात राजू है, वो सात राजू बाहर इस उससे लेकर के इस तट से लेकर इस तट तक डिब्बे का, वो पूरा सात राजू है। परंतु एक राजू का जो पाइप छोड़ा है उसका सेंटर भाग चक चक एक राजू ही आया, उसमें एक प्लेट है, उस प्लेट पर असंख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या है। और स्वर्गों की संरचना भी उसी पाइप के भीतर है, नरकों की संरचना भी उसी पाइप के भीतर है। ऐसा है कि एक राजू के भीतर ही आधा राजू, इधर सौधर्म स्वर्ग और इधर ईशान स्वर्ग, आधा इंच में अंदर ही अंदर सौधर्म ईशान, फिर उसके ऊपर महेंद्र सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, एक के ऊपर एक स्वर्ग। मतलब ऐसे स्वर्गों की संरचना यहाँ जैसे दर्शाया है नंबर दे करके। सुमेरु पर्वत जो है वो काला काला जो दिया है बीच में वो हो गया, और उसके ऊपर से स्वर्ग प्रारंभ हो गया, पहला दूसरा नंबर डाला है, पहला दूसरा उसके ऊपर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदहवां पंद्रहवां सोलहवां, सोलह स्वर्ग है। उसके उपरांत नौ ग्रहवेक विमान है, नंबर भर डाला है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, यानी नौ विमान वहाँ है उस स्थान पर। उसके उपरांत नौ अनुविश है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, वहाँ पर भी नंबर डाला है। तो नौ अनुदिश इस जगह है, पांच अनुत्तर विमान इसके उपरांत हैं, एक दो तीन चार पांच नंबर डाला है, वहां पांच अनुदिश हैं। इसके उपरांत क्या है? सिद्ध शिला, ये आ गया। सिद्ध शिला कैसे दर्शाया है? चंद्राकर दर्शाया क्या? ऐसा है क्या? छत्राकार है कि चंद्राकार है? वहाँ चंद्राकार है क्या? छत्राकार है ना, छोटी पुस्तक में छत्राकार है, बड़ी पुस्तक अगर है तो उसमें चंद्राकार, उसमें सुधार किया गया है, छोटी पुस्तक में वही सही है, छत्राकार है। जैसे छत्र है ना भगवान के ऊपर, उस तरह का सिद्ध शिला है। ऐसा एकदम स्लो मुड़ा हुआ, एकदम ऐसा भी नहीं गोल, एकदम स्लो मुड़ा हुआ है। उस सिद्ध शिला का आकार है 45 लाख योजन, 45 लाख योजन, 45 लाख योजन विस्तार वाला इस मध्यलोक में सबसे बीचों बीच जो ढाई द्वीप है, जम्बूद्वीप, धातकी खंड, पुष्करार्ध, मानसोत्तर पर्वतक, जो ये ढाई द्वीप है, ढाई द्वीप का विस्तार भी 45 लाख योजन कहा है, और सिद्ध शिला का विस्तार भी 45 लाख योजन कहा है। अगर सिद्ध शिला को मध्यलोक में लाया जाए उतार करके, तो पूरा ढाई द्वीप को ढाक देगा, वो सब अंधेरा पड़ेगा, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा, प्रकाश नहीं आएगा। यानी उसका और इसका नाप एक है। और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो कितना ऊपर उठेगा वो, फिर उसका बैलेंस कैसे रहेगा? पर्वत जो होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होते, पर्वत ऐसे होते हैं जमीन पर। तो लोक के अग्रभाग पर जो सिद्ध शिला है, वह सिद्ध शिला, वो जो हमने परिकल्पना भी दी पाइप का, उसके सेंटर में है। उस पाइप के बिल्कुल ऊपर पैक है मान लो, उसके शंटर में एक छत्र रख दो 45 लाख योजन, और वो एक राज्य प्रमाण जो विस्तार है उसका चौक का, उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र बैठते हैं, उतना बड़ा है वो, क्योंकि एक राज्य का नाप तोल तो बताया था बहुत बड़ा होता है वो, कितना देव विमान का उदाहरण दिया था, कितना असंख्यात योजन तो है ही, असंख्यात योजन मैंने वो भी कल्पना में नहीं आता, तो एक उदाहरण दिया था हमने, एक देव विमान एक सेकंड में लाखों किलोमीटर की रफ्तार से जाना और 6 महीने तक लगातार जाना प्रति सेकंड, लाखों किलोमीटर की रफ्तार से 6 महीने तक जाना और जहां 6 महीने पूर्ण हो गए वहां रुक जाना, उसकी जो दूरी बनेगी उसको कहते हैं एक राज्य। और लोक कितना राज्य है, ये 14 राज्य, नीचे से लेकर ऊपर सिद्ध शिला तक, सिद्ध परमेश की जहां है वहां तक 14 राज्य है। एक राज्य पार करने में 6 महीने लगते हैं एक देव को, और लाखों किलोमीटर की रफ्तार से भागता है विमान, तब 6 महीने में पहुंच पाते हैं, अपने पूरे हाई स्पीड से जाता है विमान से वो, तो नीचे से ऊपर आने के लिए कितने महीने लगेंगे। इधर निगोद से सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध परमिष्टियों तक कोई देव आना चाहता है तो कितने महीने लगे, 7 साल लगे, एक एक राज्य के लिए 6 महीने, 7 साल लगे कि नहीं। अब देखो 7 साल तक प्रति सेकंड लाखों किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे, 7 साल तक जाएंगे जब आएगा वो, इतना बड़ा लोक है, 3 लोक की कल्पना करो कितना बड़ा है ये, उस वेग के आधार से कल्पना करो। यहां पर तो किसी का नहीं, देव विमान जा सकता है क्योंकि देव वही क्रिक शरीर वाले होते हैं, वो कहां रहते हैं 16वें स्वर्ग में, कितना राज्य हो गया देखो, ये बताएं देखो इधर लिखा है आड़े में ऐसा 3.5 राज्य, कहां से कहां तक, मध्य लोक से लेकर वो जो 8वां स्वर्ग है ना वहां तक ये 3.5 हो गया, और वहां से ऊपर सिद्ध परमिष्टि तक वो 3.5 हो गया, 3.5 ये 7 राज्य हो गए। देव 16वें स्वर्ग से मध्य लोक में आने के लिए उनको ज्यादा समय नहीं लगता, विक्रिया से आता है तो एक सेकंड में आ जाएगा, आत्मा के प्रदेशों को पहुंचा दिया, आत्मा की गति बहुत तेज है, आत्मा की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, जैसे हाथ में टॉर्च है स्विच दबाते ही वहां प्रकाश दिख जाता है, लाइट की स्पीड भी कम है, ऐसे देव विक्रिया करके यदि वो जाना चाहे तुरंत वहां पर हाजिर हो जाएगा, मध्यलोक में ढाई द्वीप में अभी 20 समोच्चरण लगे हैं तीर्थंकरों के, एक समय में वहां से 20 विक्रिया बना लेगा और सब जगह एक एक पहुंचा देगा, मूल शरीर से तो आता ही नहीं वो, मूल शरीर उनका अपने विमान में ही बना रहता है, तो इस मूल शरीर से आत्म प्रदेश को बाहर भेजते हैं, आत्मा यहाँ भी है, बीच में भी है, और जो विक्रिया डुप्लीकेट शरीर बना है उसके साथ भी जा रहा है। बहुत एक समय में अनेक जगह जा सकता है, जैसे राम युद्ध में अपना अनेक शरीर बना करके युद्ध लड़ते थे राम, है ना, राम भी नहीं, वो तो विद्या है उनकी, राम के पास तो विक्रिया थी, औदारिक विक्रिया करते थे। राम और रावण जब लड़ते थे तो राम अनेक शरीर बना लेते थे उसमें, रावण तो सात मुख बना सकता था, दस क्या, हाँ दस, इसलिए दशानन नाम पड़ा, सात मुख बना गया, दस मुख बना करके लड़ता था वो। राम अनेकों शरीर बना करके युद्ध करता था, अलग अलग, वहां भी लड़ रहा है, यहाँ भी लड़ रहा है, यहाँ भी लड़ रहा है, ओरिजिनल कौन उसमें पता नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता था। उसमें एक ओरिजिनल होता है और उसको अगर बांध लग गया तो मर जाएगा, ओरिजिनल शरीर को कुछ लगा तो व्यक्ति मर सकता है, लेकिन विक्रिया को कितना भी बांध चलाओ उसको कुछ होना ही नहीं है, वो तो गायब ही हो जाएगा, बांध लगते ही गायब, मरेगा नहीं। आप छाया को, अपनी छाया को कितना भी मारो आप मरोगे, छाया मारने से व्यक्ति नहीं मरता, व्यक्ति जहां है वहां बांध लग जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, तो छाया भी चली जाएगी, ऐसी बात है। वो एक देव अपनी विक्रिया से जाना चाहे बहुत जा सकता है दूर तक, इसका परिचय ले लें। बीच में पहला मध्यलोक से शुरू करें, मध्यलोक में जो त्रिकोण आकार का खड़ा वो जो बताया है वो क्या है, सुमेरु पर्वत, वैसे तो एक ही बताया है, संकेत मात्र है, पांच मेरु पर्वत ऐसे हैं। और ये मध्यलोक इस तट से इस तट तक, बीच में जो है वह केवल एक राजयोग प्रमाण है, और ये जो दो लाइन बीच में खींची है वो पाइप है चौकाकार का, इसको तृष्णाड़ी बोलते हैं, तृष्णाड़ नीचे लिखा है, कन्नड़ में भी दिया है और मराठी में भी दिया है। तृष्णाड़ी कहाँ रखा है, लिखा है नीचे, सबसे नीचे तृष्णाल, इसको तृष्णाल बोलते हैं। ये मध्यलोक है, इसमें सुमेरु पर्वत, असंख्यात द्वीप, समुद्र वगैरह आते हैं। उर्द लोक में, उर्द लोक कहाँ से शुरू हुआ, सुमेरु पर्वत के चोटी से ऊपर, शिखर से ऊपर, ये 16 स्वर्ग हो गए, 9 ग्रेविक हो गए, 9 अनुदिश हो गए, 5 अनुत्तर विमान हो गए, ऊपर ये ऊपर ऊपर हैं सभी, और सबसे लास्ट में सिद्धशिला है। सिद्धशिला के बाद कितने ही मील ऊपर जाने के उपरांत, कोई लोग समझते हैं कि सिद्धशिला पर सिद्ध परमेष्ठी बैठे आराम से, तो उनके लिए बैठने के लिए कोई आधार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आत्मा मोक्ष गई तो शरीर तो है ही नहीं, कर्म भी नहीं, श्वासोश्वास भी नहीं, कुछ भी नहीं, आत्मा केवल आत्मा है। शरीर हो तो श्वासोश्वास चाहिए, श्वासोश्वास भी नहीं उनको, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा मुक्त हो गई शरीर से तो सीधा मध्यलोक से सात राज्यों तक एक सेकंड में ही जाता है, इतनी स्पीड है आत्मा की। अगर यहाँ सुमेरु पर्वत पर मोक्ष हो गया आपको तो आप एक सेकंड में यहाँ आ जाएंगे लोक के मस्तक पर, इतनी स्पीड है एक आत्मा की। तो सिद्ध शिला पर बैठे हैं क्या सिद्ध भगवान? नहीं। कहाँ बैठे हैं? अंतिम वात वलय में बैठे हैं, विराजमान है। ये जो तीन पट्टियां दी है चारों ओर तीन लोक को घिरता हुआ, तीन पट्टियां हैं ये, इसको क्या बोलते हैं? वात वलय। ये वात वलय हैं तीन। वात वलय का तात्पर्य ये ऐसे हैं, ये जैसे बॉक्स की कल्पना करो, ये बॉक्स तीन लोक वाला, तो इतना मोटा पर्त एक वायु का उससे घिरा हुआ है पूरा उसी आकार से, जैसे साइकिल की चाक के लिए ट्यूब घिरा हुआ रहता है और उसमें वायु होती है। एक ट्यूब चढ़ा दिया, पहला ट्यूब ट्यूब में पैक हो गया, उसमें वायु है, उसके ऊपर एक और ट्यूब लगा दो चारों ओर रबर का, यानी रबर की थैलियां जैसी बनाओ। हाँ, पहला वाला थैली चढ़ा दिया उसमें भी वायु है, दूसरा थैली हवा भर करके उसको भी चढ़ा दो, तीसरा वात वलय तीसरा भी चढ़ा दो, ऐसे वात वलय तीन लोक के ऊपर, और उसी वात वलय पर ये पूरा तीन लोक खड़ा है, इसका सारा भार उस पर है। और बाहर क्या है फिर? तो चढ़ा दिया एक लोक बन गया, ये वात वलय सहित एक लोक बन गया, तो बाहर क्या है? अनंत अलोक आकाश है ये। अलोक आकाश बड़ा है क्या लोक आकाश बड़ा है? अलोक आकाश अनंत है, ऐसे लोकों को अनंत लोक भी और रखोगे तो भी जगह है। आकाश के बराबर बड़ा तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता, आकाश सबसे बड़ा है, उसको अलोक आकाश कहा, क्योंकि उस अलोक आकाश में कोई लोक नहीं है, लोक तो एक ही है, अनेक तो है ही नहीं, केवल एक लोक है। तो लोक में क्या है? तो छह द्रव्य हैं, लोक के अंदर छह द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, छह द्रव्य हैं। इसमें ठसाठस भरे हैं, वो इसके भीतर हैं, डब्बे के भीतर, मतलब लोक में छह द्रव्य हैं। और आपके मंदिर के डब्बे में छह द्रव्य हैं, वो भी तो द्रव्य है, उसमें भी द्रव्य भरते हैं और इसमें भी द्रव्य भरा हुआ है। हाँ, अब ये बता रहे थे हम, त्रस जीव जो होते हैं वो केवल त्रसनाल में ही रहेंगे, बाहर नहीं, एक भी नहीं, एक भी जीव नहीं मिलेगा त्रस जीव बाहर, ये जो खाली प्रदेश है चारों ओर, वहां स्थावर जीव ही रहेंगे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये पांच स्थावर कायिक जीव रहेंगे, स्थावर कायिक। और त्रस कायिक कहां रहेंगे? त्रस नाली में। और स्थावर काय के भी रहेंगे। यहाँ स्थावर भी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति यहाँ भी है, बाहर भी है, परंतु तृष्ण जीव जो है वो केवल तृष्णाल में ही रहेंगे, इसलिए इसका नाम तृष्णाल ऐसा पड़ा। ये तृष्णाल है। अब क्या बता रहे थे, तृष्णाली का तो हो गया, सिद्ध शिला को बता रहे थे। सिद्ध शिला के उपरांत सिद्ध परमिष्टि है, सिद्ध परमिष्टि सिद्ध शिला के ऊपर है का मतलब उसके ऊपर बैठे नहीं, उसके ऊपर है यानी बहुत बाद में है, अंतिम वात वलय में है, ये बता रहा था। सिद्ध परमिष्टि कहाँ है, अंतिम वात वलय में है, जहाँ पर वात वलय समाप्त होता है उसकी सीमा पर। और कैसे ठहरते हैं देख लो, सिद्ध परमिष्टि अंतिम वात वलय की अंतिम सीमा ये है, उसके अंदर वायु है। सिद्ध परमिष्टियों का सबका मस्तक, जैसे खड्गासन से मोक्ष गए हों तो खड्गासन से ही वहाँ आत्मा रहेगी, पद्मासन से गए हों तो पद्मासन से ही वहाँ आत्मा रहेगी, इस प्रकार से अनंत सिद्ध परमिष्टि नाना प्रकार के आसन से हैं। तो सिद्ध परमिष्टियों का सभी का मस्तक तो उससे लगा हुआ है, वात वलय से, और उनकी ऊंचाई अलग अलग है। आदिनाथ भगवान 500 धनुष, महावीर भगवान 7 हाथ, तो आत्मा उसी आकार से वहां, आत्मा भी उतने ही पूर्व शरीर के आकार से ही वहां सिद्धालय में होती है। तो उनकी ऊंचाई अलग अलग है कि नहीं, जितने जीव हैं उन सब की, विवेक क्षेत्र से जो मोक्ष जाते हैं उनकी ऊंचाई तो एक सी है, 500 धनुष वाले रहते हैं, कम ज्यादा वहां नहीं होता, क्योंकि उत्सर्पणी अवसर्पणी वहां नहीं है, काल का प्रभाव तो यहाँ है। तो मस्तक तो सबका एक लेवल पर आया, पांव सबका ऊपर नीचे ऐसा आएगा। हाँ, अपने से उल्टा, अपन पांव से हाइट वाइज खड़े रहते हैं, अब हम सिर से हाइट वाइज खड़े रहते हैं, वो पांव से हाइट वाइज खड़े रहते हैं, ऐसा बनेगा ना। मस्तक जाकर के वात वलय से लगेगा सबका, उससे ऊपर तो जाने वाला नहीं है, सबका मस्तक टिकेगा वहां, ऐसा रहेगा उल्टा। मोक्ष इसलिए कहते हैं, मोक्ष जाने तक बहुत शीर्षासन करना पड़ता है, बहुत शीर्षासन करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वहां पांव से शीर्षासन लगाएंगे। हम सिर से शीर्षासन करना पड़ता है, उनको कुछ नहीं, मस्तक सबका समान, पांव सबका आगे नीचे। शीर्षासन के बाद हमारा ऐसा होता है, सब लोग शीर्षासन लगाओ तो मस्तक तो सबका एक सा रहेगा, लेकिन पांव सबके अलग अलग रहेंगे, जिसकी जितनी ऊंचाई है उस आकार से रहेंगे। ऐसे सिद्ध परमिष्टि हैं। अब ऊर्ध्व लोग कहां से कहां तक माना जाए, सुमेरु पर्वत के शिखर से कहां तक, सिद्ध शिला सिद्ध परमिष्टियों तक, अंतिम वात वलय तक। फिर ये ऊर्ध्व लोक कहा, लोक यानी लोक, लोक कहां तक है, लोक कहां तक है, सिद्ध शिला तक तो है ये, सिद्ध परमिष्टियों तक लोक है, अंतिम वात वाले तक ही लोक माना जाएगा। उसके बाहर क्या है? अलोक, उसको अलोक कहते हैं। तो अलोक को ऊर्ध्व लोक भी नहीं मान सकते और अधोलोक भी नहीं मान सकते, वो तो अलोक तो अलोक है, चारों ओर खाली है, वो नीचे भी खाली, बाजू में भी खाली, साइड में भी खाली, दशो दिशा में खाली खाली प्रदेश है वो, इसको अलोक आकाश बोलते हैं। ये ऊर्ध्व लोक हो गया। अब अधोलोक में आइए, अधोलोक में नरक पृथ्वियां हैं। कौन सी पृथ्वी? नरक पृथ्वी। पहला नरक कहाँ है? सुमेरु पर्वत के नीचे, इतनी एरिया में पहला नरक, फिर नीचे के एरिया में दूसरा नरक। ये ऐसे नरकों की पृथ्वियां, ऐसी भूमि है, पृथ्वी की प्लेट बनी हुई प्लेट, उन प्लेटों पर नरकों नारकी जीवों की व्यवस्था है। एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट है, ऐसे प्लेट जमीन की प्लेट बनी हुई, उसमें नारकी जीव रहते हैं। एक राजू प्रमाण ऐसे अखंड प्लेट है, कहां से कहां तक, इधर ये वात वलय है ना, इस वात वलय से इधर के वात वलय तक ऐसे प्लेट बनी हुई, उसके नीचे फिर ऐसा प्लेट बना हुआ है, वो दूसरा नरक। तीसरा नरक का ऐसा प्लेट बना हुआ है, ऐसे प्लेट जैसे अपनी सीढ़ियां बनी हुई है चढ़ने की, ऐसे सब जगह प्लेट एक के ऊपर एक। तो सात प्लेट हैं ये, सात प्लेटों का सात नरक हो गया। निगोद है सबसे नीचे, निगोद इसलिए लिखा है यहाँ, यहीं पर निगोदी जीव रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर विशेष करके कोई तृष्ट जीव नहीं होता, केवल स्थावर कायिक जीव होते हैं, इस दृष्टि से निगोद रखा, निगोद लिखा है। वैसे तो निगोद निगोदी जीव सब जगह ठसाठस भरे हैं, तीन लोक में, तृष्णाली में भी हैं और तृष्णाली के बाहर भी हैं, इस डब्बे में सब जगह। निगोद जीव तो ऐसे ही हैं, जैसे उस डब्बे में चकमकी भर दो पूरा, कोट कोट करके भरो उस डब्बे में चकमकी, छोटे छोटे कण ऐसे निगोद जीव तृष्णाली में भी हैं, बाहर भी हैं, ठसाठस भरे हैं। निगोद जीव सर्वत्र हैं, सिद्ध परमिष्टि जहाँ है ना उधर भी है, वहां पर भी वो 18 बार जन्मते हैं मरते हैं। सिद्ध परमिष्टि अनंत सुख में है और उनके अंदर वो आ रहे हैं जा रहे हैं, जन्म मरण चल रहा है। सिद्ध परमिष्टि का प्रभाव उन पर नहीं और उनका प्रभाव सिद्ध परमिष्टि पर नहीं, दोनों आत्माएं स्वतंत्र हैं। जो ये कहा जाता है कि सारे संसारी जीव जो भी होते हैं, हम लोग हैं, पेरेंट्स हैं, सभी संसारी प्राणी, ये क्या बोलते हैं, हम उनके अंश हैं। देखो ये परिकल्पना, देखो ये मिथ्या परिकल्पना कैसी है, हम परमात्मा के अंश हैं, तो सिद्ध परमात्मा परमात्मा है तो उनके हम अंश हैं, ऐसा कहते हैं। सही है कि गलत है? ये यदि अंश होते तो निगोद जीव तो अनंत हैं वहां, और निगोद जीव परमात्मा के यदि अंश हैं तो उनकी अनुभूति उनको होना चाहिए, उनकी अनुभूति उनको होना चाहिए, उनके अनंत सुख का अनुभव निगोदी को होना चाहिए और निगोदी जीव का अनुभव सिद्ध भगवान को होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? कुछ हो ही नहीं सकता, आत्मा स्वतंत्र है। यहीं पर यदि परमात्मा के हम सभी अंश हैं, तो आप लोगों का अनुभव हमें होना चाहिए, हमारा अनुभव आप लोगों को होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, अंश है, टुकड़े हैं, तो हम भी एक टुकड़े हैं। तो अनुभव आपको आपस में हम लोगों को भी होना चाहिए और उनका हमारे साथ भी होना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत मिथ्या है। हाँ, परम सिद्ध होते वही तो कह रहे हैं ना, उनके अनंत सुख का अनुभव निगोद जीव को भी होता। हाँ, हम सात राज्यों दूर हैं, निगोद जीव तो उनके भीतर ही है, उनको अनंत सुख की अनुभूति हो जाती, ये कल्पना मिथ्या है, ये जनवाणी है, जिनवाणी नहीं। वो कल्पना जनवाणी कल्पना, किसी छद्मस्थ ने, किसी व्यक्ति ने कल्पना कर दी तो वो फैल गया, मोक्ष जाने की भी जरूरत नहीं। और जन की कल्पना ये है कि परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो एक है क्या? परमात्मा एक ही है, ये भी गलत है। अनंत काल से मोक्ष होते चले आ रहे हैं, परमात्मा अनंत बन गए, तो वो सिद्धांत भी गलत हो गया। सभी का संचालन करता है, संसार का संचालन करता है, तो ये भी तीसरी बात, ये तीसरी बात हो गई, ये भी गलत है। कैसे संभालेगा एक अकेला, हम घर नहीं चला पा रहे हैं। अकेले को घर नहीं चल पा रहा है, मानता ही नहीं कुछ। और परमात्मा का हम कैसे मानेंगे? घर के लोग घर के आपस में नहीं मान रहे हैं, ये मत करो कहने से बार बार करता है। आपका बच्चा नहीं मान रहा है, आपका बच्चा नहीं, चॉकलेट मत खाओ उसमें से बहुत गलत है, तो ही मांगता है वो। परमात्मा को फोन करो, ये नहीं मान रहा है, आपका बात मान लेगा। आप जरा मनवा लो, क्योंकि आपके बिना तो कुछ नहीं होता। आपने यही सिखाया है कि चॉकलेट खाने का, पूछो परमात्मा से, क्योंकि आपके आज्ञा के बिना चॉकलेट कोई नहीं खा सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। परमात्मा के वो सभी संचालक वही, ऐसा यदि कहेंगे तो हमारा बच्चा चॉकलेट जो खा रहा है वो परमात्मा के आदेश से खा रहा है, और फिर वो उनके आदेश से खा रहा है और चॉकलेट अशुद्ध है, मांसाहार है वो, तो फिर हम छुड़ाने वाला कौन? हमारा आज्ञा चल सकती है क्या उसमें? आपकी आज्ञा अपने बच्चे पर चल सकेगी क्या? बच्चा छोड़ ही नहीं सकेगा, बच्चा भी कहेगा परमात्मा की आज्ञा खा रहा हूं। तुम कौन छुड़ाने वाले? वहां से आज्ञा आने के बाद छोड़ दूंगा। माँ बाप छोड़ा नहीं सकते थे, फिर बच्चा रो रहा है तो आप क्यों उठाते? परमात्मा की आज्ञा आने दो, फिर बाद में उठाना। ऐसे परमात्मा कोई आज्ञा देता? कुछ नहीं, ये मिथ्या कल्पना ही है। और ये कितना फैला हुआ है, ये मिथ्या कल्पना सबके दिमाग में, सबके क्या, आप लोगों के दिमाग में भी वही है। कुछ बिल्ली कूद गई, आवाज आ गई, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, भगवान याद आते। कोई पूछता है आपसे, क्यों, कैसा, दुकान कैसे चल रहे? सब परमात्मा की कृपा से। तो आ क्या आप क्या कम है? जनवाणी को तो मानते हैं आप, जिन वाणी को कहां मान रहे, ऐसा कह देना गलत है क्या नहीं कि परमात्मा की कृपा से आपका संसार चल रहा है, यानी उनका आशीर्वाद है आपका संसार चलाने के लिए आशीर्वाद देते, हम नहीं देते तो वो कैसे देंगे। संसार चलाने के लिए हम ही आशीर्वाद नहीं दे सकते, दीक्षा के लिए आशीर्वाद देते परमात्मा, न दीक्षा का आशीर्वाद देते न संसार चलाने का आशीर्वाद देते। मुनि तो दीक्षा दे भी सकते हैं और दीक्षा का आशीर्वाद देते, संसार चलाने का आशीर्वाद देते नहीं देते। तो परमात्मा इतने बड़े संसार के संचालनकर्ता बन जाए तो कितना बड़ा पाप लगेगा, और परमात्मा बनने के बाद संसार का संचालन कर रहा है तो फिर परमात्मा वो कैसे बन गए। संसार का संचालन करने वाले आप भी हैं, संसार चला रहे हैं, संसार कर रहे हैं, तो इसमें तो आपको पाप लग रहा है, और इसी पाप से बचने के लिए हम साधु बने हैं, और हम संसार के संचालन से दूर हैं, साधु को दूर रहने के लिए कहा। जो संसार के संचालन से दूर रहता है वो सन्यासी कहलाता है, साधु कहलाता है, मुनि कहलाता है, यति कहलाता है, श्रमण कहलाता है। संसार के संचालन से दूर होने पर ही परमात्मा बनना संभव, और परमात्मा बनने के बाद ये संसार का संचालन करने वाला बन जाए तो उनको क्या कहे, सन्यासी कहे कि परमात्मा कहे कि संसारी कहे, क्या कहे फिर। नहीं, संसार का संचालन करने वाला परमात्मा हो नहीं सकता, यदि वो परमात्मा है तो संसार का संचालक नहीं कहलाएगा, और संसार का संचालक है तो वो संसारी कहलाएगा। आप जैसे, आप में और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं फिर। हाँ, एक साथ रहते, एक जैसे रहते, एक जैसे रहते परमा। आप दुखी भी होते हैं तो उनकी आज्ञा से, सुखी भी होते हैं तो उनकी आज्ञा से, नरक भी जा रहे हैं तो उनकी आज्ञा से, स्वर्ग भी जा रहे हैं तो उनकी आज्ञा से, क्लास में भी आ रहे हैं तो उनकी आज्ञा से, घर भी जाएंगे तो उनकी आज्ञा से, अगर किसी दिन आज्ञा नहीं आए तो यहीं बैठे रहोगे क्या। किसी दिन आज्ञा नहीं आई शाम तक यहीं बैठे रहोगे। आप कहोगे परमात्मा आज्ञा नहीं दे रहा है, नहीं नहीं देते तो हम जल जाएंगे। आप स्वयं जाते हैं, आप पर हमारी भी आज्ञा नहीं चल सकेगी। 10 बजे तक यहीं रहो, नहीं महाराज दुकान खोलना है। आज्ञा किसी पर किसी की चलती नहीं है, हम ही अपनी आज्ञा के कर्ता धर्ता हैं। हर द्रव्य स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र सिद्धांत वहां परतंत्र हो गया है। किसी ने उपदेश दिया होगा किसी जमाने में, वो इतना ज्यादा हो गया कि हम लोगों के मन में भी घर कर गया। वो कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कहते हैं परमात्मा की कृपा, बुरा हो रहा है तो भी परमात्मा कृपा नहीं कर रहे हैं। हाँ, परमात्मा किधर किसकी ओर देखेंगे फिर। और हम लोगों की ओर देखने लग जाए, कृपा करने लग जाए और दुखी करने लग जाए तो फिर वो परमात्मा कैसे, वो भी संसारी हो जाएंगे। और ऐसे इस प्रकार के लक्षण वाले को परमात्मा कहना ये मिथ्या ही है, पूरा मिथ्या है, काल्पनिक है। वही तीन कल्पना की ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा पैदा करता है लेकिन एक ही है वो, देव ही परमात्मा है। हाँ, वस्त्रधारी को ही परमात्मा कहते हैं। देव तो वस्त्रधारी होती ही है, मतलब देव को है ना, जो इंद्र है ना, इंद्र का दूसरा नाम ब्रह्मा है। अनेक नाम है उनके, इंद्र कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, एक ही बात है। वो इस अपेक्षा से कहा है, जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो नगर की सृष्टि करते हैं। देव बना सकता है, एक नगर निर्माण कर सकता है। अयोध्या नगरी की नगरी का निर्माण इंद्र ने ही किया। जब आदिनाथ भगवान जन्मे थे, पहली बार अयोध्या की रचना उन्होंने की। उससे पहले तो भोगभूमि थी। उस समय न अयोध्या था, न कुछ था, न गांव थे, कुछ भी। जिसको जो घर चाहिए ले लेता था और कहीं भी रह जाता था। नगरों की रचना थी नहीं उस समय, घर बनाने की जरूरत नहीं थी। और कहीं भी रखो उस घर को, हमको यहाँ चाहिए तो यहाँ के सक करके आ जाता। भूभूमि में कोई नगरों की रचना नहीं। नगर की रचना सबसे पहली बार आदिनाथ भगवान के जन्म के पहले, उनके माता पिता जहाँ जन्मे थे वहाँ पर उन्होंने नगर की रचना की। उसमें आदिनाथ भगवान जन्मे। सप्तखंड महल था वो। हाँ, उसको कौन सा स्वस्तिक आकार का रहता है वो, कौन सा स्वस्तिक बोलते हो? दो प्रकार के स्वस्तिक होते हैं, एक ऐसा करके पूजन के टाइम में करते अपन, वो अलग है। एक ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा करके फिर उसको भी ऐसा 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 बाहर निकालते, उसका नाम याद नहीं आ रहा। कौन सा स्वस्तिक कहते हैं उसको, ध्यान है? जो उलझा हुआ रहता है रिक, उस आकार से वो महल बनता है। उसकी रचना स्वस्तिक आकार से करते हैं वो। तो इंद्र जो है उसकी उन्होंने रचना की, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। अयोध्या की सृष्टि उन्होंने की, नगर की सृष्टि उन्होंने की, इसलिए उनको ब्रह्मा कहते हैं। और फिर वो नगर जो है, वो महल जो है, तीर्थंकर रहने तक रहता है, फिर गायब। उनका पुण्य उनके साथ। वो जो रहते हैं वो तो तीर्थंकर रहने तक रहता है, फिर गायब। तो गायब कौन ने किया? इंद्र ने किया, तो महेश हो गए। इंद्र का नाम महेश भी। अब जब तक तीर्थंकर उसमें रहे तब तक तो उन्होंने नाश नहीं किया, उसकी रक्षा की, देखभाल किया। तो विष्णु, इंद्र देखभाल कर रहा है इसलिए विष्णु, इंद्र ने ही बनाया इसलिए ब्रह्मा, और इंद्र ने मिटाया इसलिए महेश। तो उस इंद्र को ही परमात्मा कहते हैं ये। तो देव भगवान है उनकी दृष्टि में, वस्त्रधारी को, चौथे गुणस्थानवर्ती इंद्र वही भगवान है, चौदहवें गुणस्थानवर्ती नहीं, चौथे में ही भगवान, चौथे गुणस्थानवर्ती देव ही भगवान। मतलब ये है कि चमत्कार से प्रभावित रहे, ये जादूगर बना भी रहा है, मिटा भी रहा है, रक्षण भी कर रहा है, जादूगर। इन्हीं को परमात्मा समझो, इनमें कितनी बड़ी शक्ति है। तो शक्ति पूज हो गई, शक्ति पूज हो गई, चमत्कार पूज हो गया, बनाया मिटाया, अद्भुत ऐसा हुआ। तो चमत्कार पूज हो गया, शक्ति पूज हो गई, तो एक धारा चल पड़ी पूरी दुनिया में। भगवान का मतलब ये कि जो मिटाता भी बनाता भी है वो अकेला ही है। हाँ, अब उसमें से एक ही इंद्र को जिन्होंने बनाया उन्हीं को, और शेष ने नहीं बनाया। इंद्र तो स्वर्ग में कितने होते हैं? 16 होते हैं, 16 इंद्र। 16 इंद्रों को परमात्मा मानना चाहिए, लेकिन जिन्होंने बनाया उन्हीं को माना। सौधर्म इंद्र ने ही बनाया, बाकी इंद्रों ने नहीं बनाया, तो एक को ही पकड़ लिया, एक इंद्र ही परमात्मा, और उन्हीं के सभी हम अंश। हम देवों के अंश हैं क्या? हम इंद्र के संतान हैं क्या? नहीं। और वह इतना फैला, एक तो परमात्मा के रूप में देवों को, और फिर जो परमात्मा असली परमात्मा जन्मे थे वो तो आदिनाथ। तो इन आदिनाथ की रक्षा, सेवा, उपकार, समोषण की रचना, आना जाना, देखभाल करना, ये सब किसका काम था? उसी इंद्र का था और देव परिवार का था। जब गर्भ में आए थे तब भवनवासी देवियां, श्री री दीर्घ कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि, ये देवियां, ये सब देवगति के देवियां तो हैं, माता की सेवा की, भगवान की माँ की, मोर देवी की सेवा में आई। तीर्थंकर गर्भ में आने के बाद आती है, आने से पहले भी रहती है सेवा में, आने की संभावना रहती है। इसलिए तो जिसकी सेवा जो करने आ रहे हैं वो महान है, सेवी महान है कि सेवक महान है? हाँ, असली परमात्मा तो गर्भ में आया है, वो है असली परमात्मा, और मान लिया किसको? इंद्र को, वही परमात्मा। सेवक को ही परमात्मा सेवी कहा, सेवक को ही सेवी कहा, और जो सेवी था उसको माना ही नहीं, उनको तो सामान्य मनुष्य की तरह कहा। वो तो मनुष्य आए गर्भ में, मनुष्य नहीं, परमात्मा की शक्ति को लेकर के अवतरित हुआ है वो जीवात्मा, जिनकी सेवा सारा देवलोक देवलोक ही उतर करके कर रहा है। उनका प्रभाव हमारे ऊपर आ गया, जनवाणी का प्रभाव जिन वाणी को न पढ़ने वाले हम लोगों पर आ गया, हम भी उसके उपासक हो गए, 9 दिन तक उसकी उपासना करें। वो भी कुछ हमारे सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, हमारे परिवार के, हमारे संसार के, हमारे धन के संपत्ति के कर्ता धर्ता हैं। वो देते हैं, हम लेते हैं, हमको सुखी बनाते हैं, हमको दुखी बनाते हैं। ये बातें आ गई कि नहीं? इसलिए तो ये 9 दिन चलता, और ये जनवाणी है, जिनवाणी तो है नहीं, तो ये असर कहां से आया? ये असर किधर का है? जैन परंपरा का है, ये बाहर का है। हमने बाहरी संस्कृति को घर में ला करके पटका दिया, वो इतना गहरा हो गया कि वो रक्तगत हो गया, और हमारा रक्त कहने लगा कि पहला पासून मेरा ब्लड ऐसा ही है। इस ब्लड में कोई चेंजेस? महाराज पूछ रहे हैं, कोई चेंजेस? नो। खून बदलना पड़ रहा है, महाराजों को पसीना आ रहा है, सबका ब्लड चेंज करना पड़ रहा है। जनवाणी ब्लड बन गया है। अब जनवाणी को एक तरफ से छोड़ना और एक तरफ से निकालना ऐसा पड़ रहा है। बहुत बुरी परिस्थिति हो गई है, जैन धर्म की। है हम कुल से जैन, लेकिन हमारी संस्कृति पूरी अजैन। हमारे पास जैनत्व बिल्कुल नहीं, ऐसा हो गया है। अब भी समझ में आ रहा है हमारा ब्लड क्या है, हम क्या हैं, हमारी ओरिजिनल परंपरा क्या है, हम कौन हैं, अब समझ में आ रहा है। डॉक्टर ने फॉर्म भरवा लिया, ब्लड चेंज का फॉर्म भरा के दो और रोज जिनवानी सुनो, तुम्हारा ब्लड फिल्टर हो जाएगा, एक तरफ से दूषित ब्लड निकलता जाएगा, शुद्ध ब्लड आता जाएगा। ये हम अभी ब्लड दे रहे हैं, जिस दिन फॉर्म भरे थे उस दिन तो हमने निकाल लिया सब ब्लड, उसी दिन आपका चेंज हो गया, लेकिन अभी तो बीमार है, लेटे हैं, ब्लड भेजा जा रहा है पूरे शरीर में। अब इस ब्लड को दूषित नहीं करना, जो नया ब्लड दिया जा रहा है इसको दूषित नहीं करना, संभालना इसको। बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये। हाँ, बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये। इस ऑपरेशन में जो जिंदगी बनी है, इस जिंदगी को जी करके आनंद लुटाओ। आपके रक्त में जैनत्व आ गया तो समझ लेना हमारे ब्लड में वो अशुद्ध परमाणु अब नहीं है। सब चेंज, ये हो गया तीन लोक का परिचय पूरा मिल गया। अब क्या शेष इसमें बचा, क्या कहने का, सब लिखा है। सिद्ध शिला कितनी, कितना विस्तार वाला है ये भी लिखा, विस्तार 45 लाख योजन, ये सभी लिखा हुआ है यहाँ। ये संक्षिप्त है, इसकी डिटेल जानकारी एक तत्वार सूत्र के ऊपर भी छपा है, उसमें बहुत है, देवों की आयु, वहाँ की लेशा, वहाँ का रहन सहन सब का उसमें वर्णन है, उसको आप देख सकते हैं। में जितने भी नक्शा थे वो पूरे हो गए। कल से ये पाठ प्रारंभ करेंगे, जहां से वो रुका है वहां से। आज इतना ही ठीक है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांध रहे। अब ना हम विषयांध रहे।